ಪ್ರಾಬದನ್ನಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯನಮ್ಮೇ ಗೌರತ್ವಿಹಿ ಗುರವೇ ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ರಾಧಿಕಾಯೈ ತದಾಲಯೈ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಾಯ ತದಭಕ್ತಾಯ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಹೀನಾಪರಾಧಲಕ್ಷ್ಯೈ ಚಿತ್ತಾಶ್ಚ ಕಾಮಾದಿತರಂಗ ಮಧ್ಯೈ ಕೃಪಾಮಯೀ ಸ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನಾ ಬಿಂದೇ ನಮಸ್ತೆ ಯಂ ಪ್ರಪ್ರಜಂತಮನುಪೇತಮಪೇತಕೃತ್ಯಂ ದ್ವೈಪಾಯನೋ ವಿರಹಕಾತರಯಾಜಿವ ಪುತ್ರೇತಿ ತನ್ಮಯತಃ ಸರ್ವೋಭಿನೇದೋ ತಂ ಸರ್ವಭೂತಹೃದಯಂ ಮುನಿಮಾನಸೇ ತವೈವಾಸ್ಮಿ ತವೈವಾಸ್ಮಿ ನ ಜಿಹಾಮಿ ತ್ವಯಾ ವಿನಾ ಇತಿ ವಿಜ್ಞಾಯ ರಾಧೇ ತನ್ಮಯಾಂ ಚರಣೇ आज विजया दशमी या दशहरा है. टुडे इज विजया दशमी उत्सव. टुडे रामचंद्र स्टार्टेड फॉर लंका फ्रॉम दंडकारण्य टू इन्वेड लंका और टू गिव ए लेसन टू रावण. आज के दिन में रामचंद्र जी ने लंका के लिए शुभ विजय किया था दंडकारण्य से. एक सेमुल का पेड़ था, सालमली वृक्ष, उसी के नीचे वो लोग थे. इसके पहले हनुमान जी ने लंका में जाकर के सीता जी का की खोज की और उसके पश्चात वो लौट करके राम को बतलाया. रामचंद्र जी ने सुग्रीव के द्वारा बंदरी सेना का संग्रह किया और आज ये विजया दशमी के दिन में विजय के लिए प्रस्थान किया. कुछ लोग समझते हैं कि रामचंद्र जी ने आज ही के दिन में रावण को मारा था, किंतु यह बात गलत है. टुडे रामचंद्र स्टार्टेड फॉर लंका. टुडे इज नॉट द डेट वेन राम किल्ड रावण, बट इन इंडिया एवरीवेयर दे थिंक दैट टुडे इज द ऑस्पिशियस डे वेन राम किल्ड रावण. And that is why in India, everywhere on Dashahara, today is Dashahara, everywhere so big, big Raman are made by bamboos and paper with 10 headed. And today Ram shoots him. In India, in Mathura is famous for this. And Raman is made of how many? 100 feet high. So big. And Ram will shoot today. And lakhs persons will go to see this Mela. Now it is going on, but you only some are here. Whole Mathura is there. In Varanasi, in all parts of India, today it is famous for this. आज इसी के लिए प्रसिद्ध है. आज मथुरा में बहुत बड़ा भारी मेला लगा हुआ होगा, लाखों लोगों की भीड़ होगी और बड़े मेला जोर से होगा. आज रावण का वध होगा, किंतु वो लोग नहीं जानते हैं कि आज रावण ने रामचंद्र जी आज इसके लिए यात्रा की. इसका कारण यह है क्योंकि यदि आज के दिन रावण मारा गया होता तो रामचंद्र जी लंका में इतने दिन कैसे रहे. यह निर्दिष्ट है वाल्मीकि रामायण से या और सब रामायणों से. रामचंद्र जी रावण को मारने के बाद में 2 दिन के बाद ही में लंका से प्रस्थान करके अयोध्या में लौटे थे, क्योंकि जिस दिन उनको राज्याभिषेक होना था उसी दिन कैकेयी ने उनसे वरदान मांगा राजा से और कहा ये आज ही से ही भरत राजा होगा, ये छोड़ करके चले जाएं। तो जिस दिन रामचंद्र जी का जन्म हुआ था उसी दिन उनका सिंहासन होना था और उसी दिन उनको वनवास के लिए आदेश हुआ। इसलिए उस दिन से 14 वर्ष गिनने पर जिस दिन होगा उसी दिन में रामचंद्र जी को अयोध्या लौटना है, नहीं लौटेंगे तो भारत प्राण प्रत्याग कर देंगे। यदि आज के दिन वो मारे गए तो आज का दिन अभी क्या है, अभी विजयादशमी कार्तिक का महीना है, कार्तिक अभी आरंभ अभी नहीं हुआ सर, कुवार का, और कुवार कार्तिक अगहन पौष माघ फाल्गुन, फाल्गुन और इसके बाद में चैत, चैत में रामनवमी के दिन में रामचंद्र जी अयोध्या लौटे थे और उसी दिन उनका राज्याभिषेक हुआ था। तो ये 5-6 महीने कहाँ रहे? भरत हैज प्रोमिस्ड दैट राम यू आर गोइंग टू फॉरेस्ट, इफ यू नॉट रिटर्न आफ्टर 14 ईयर्स ऑन द प्रॉपर टाइम I will give my this body to fire and I will die. So you must come. Ramchandra promised that I must come. If today he has killed Ravan, then why he was there? Now it is October, November, December, January and February, March. In March, Ramnavami comes when he returns to Ajodhya. Then why he was 6 months, where he was roaming? So Ram came in Phalgun month, like February last. He can delay after Ravan is killed. So it is vivid that today is the only starting day for Lanka, not Ravan killing. But in India, everywhere they do like that. Ram shoots Ravan today. इसलिए यह बात ठीक नहीं है। दूसरी बात यह, आज हमारे संप्रदाय के ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य हैं मध्वाचार्य जी, इस कली में आज उनका आविर्भाव दिवस है। वी आर अंडर ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय इन कलयुग, इन ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य इज प्रोमिनेंट आचार्य। टुडे इज द बर्थडे ऑफ दैट मध्वाचार्य। हु इज मध्वाचार्य? मध्वाचार्य कौन है? मध्व वायु के अवतार कहलाते हैं। वायु के अवतार कौन है? हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी भी मध्वाचार्य बने हैं, इतने शक्तिशाली हुए हैं। राम के अवतार में वो हनुमान जी बने हैं, कभी वही सदा ये बने हैं है? गोपीश्वर महादेव कभी बनते हैं और वही कृष्ण लीला में भीम बने और वही भीम देव वायु के अवतार इस कलयुग में मध्वाचार्य। मध्वाचार्य हनुमान जैसे या भीम जैसे भी बलवान थे, बड़े बड़े वृक्षों को ऐसे उठा करके फेंक देते, बड़े बड़े पत्थर को, 12 मन का पत्थर, 12 उसे भी अधिक, और उसको अपनी कंधे पर ले करके वो आए थे समुद्र तीर से लेकर के 12 मील तक बाज का क्षेत्र थे और उड़ीपी में लाए थे और यहाँ आने पर टूटने पर उसमें से निकला क्या? गोपीडू, उसी को अपने सिर पर आप वासुदेव स्तोत्र करते हुए द्वादश स्तोत्र बनाए और उसके साथ में यहाँ पर आए। इतने बलवान थे। आज उनके जीवन चरित्र के संबंध में हम लोग कुछ वैष्णव लोग बनेंगे, हम लोग सुनेंगे, मैं भी उनके मुख से कुछ सुनूंगा। टुडे इज द बर्थ प्लेस ऑफ मध्वाचार्य। ही इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ वायुदेव। वायु मीन्स एयर, लाइक हनुमान। हनुमान इज द सन ऑफ पवन देव एंड दैट हनुमान became Bhimsen in the time of Krishna and he served Krishna And by the order of Krishna, this Bhim became Madhvacharya in Kali Yuga to preach everywhere Brahma Madhva Gaudiya precepts everywhere. She was so strong in his philosophy, Vaishnava philosophy. She cut all the arguments of Mayavad, especially of Shankaracharya. She adopted some theory of Ramanuj, but even there was some difference in his philosophical idea. And he cut the arguments of all also Ramanuj. But Ramanuj was Vaishnava, so he accepted some theory. And he did not cut out the arguments of Ramanuj like Mayavad. Very politely he cut out the argument that Jiva and Brahma is not one. There is so much a difference in Brahma and Jiva. Ramanuj has adopted that Brahma and Jiva and this Prakriti are in a body. Soul is Supreme Personality of Godhead, Brahma. Jiva is the Sukshma Shari like Jivas, and this whole world is like the outer body of, external body of Parabrahma. But Ramanuj, Madhvacharya told, no, this is not good philosophy. Jiva cannot be like Brahma. Jiva and Prakriti are Shakti, and Shaktiman is Parabrahma. So how it can be? So he has accepted five theories. There is difference between Jiva and Brahma and Jiva and matter and there are five differences. From Madhvacharya ne kaha, यद्यपि रामानुज वैष्णव थे तब उनको थ्योरियों का खंडन किया, ये जीव और ब्रह्म एक नहीं है, इनमें पांच भेद हैं, ब्रह्म में और जीव में भेद है, जीव और जीव में भेद है, जीव और माया में भेद है, प्रकृति में और प्रकृति और प्रकृति में भेद नहीं है, मतलब प्रकृति के उत्पन्न जो जीव ये सब और प्रकृति और ब्रह्म में भेद, ये पांच भेद हैं। जीव और ब्रह्म में सदा सेवक और सेव्य का संबंध है, केवल शरीर और आत्मा का जैसे शरीर ऐसा नहीं, इसलिए दोनों एक नहीं हो सकते। किंतु फिर भी उन्होंने कहीं कहीं पर तत्व के लिए भेदाभेद तत्व को स्वीकार किया। इसके संबंध में हम लोग अभी बतलाएंगे। मध्वाचार्य ऑल्सो एक्सेप्टेड समटाइम्स in gone way, gone vengeance, not hidden, not prominent, secondary way, achinta bheda bhed. So we are connected to him in this line. I think that other Vaishnavas should tell, I should hear, I should not speak more due to my operation. But in the last I will tell something. अंत में मैं कुछ बोलूंगा। अभी हमारे महाराज जी, हमारे गुरु भाई आए हैं वैष्णव महाराज जी, ये कुछ मध्वाचार्य जी के संबंध में कुछ अभी खड़े होकर के बतलाए। ये खड़े दिए दो।
और अभी समय तो बहुत कम है,
तो अभी मैं भी कुछ कहना चाहता था, और यशुपाल ब्रह्मचारी अंग्रेजी में कुछ बोल दें।
अभिश्रानंद जी ने आप लोगों को बहुत ही सुंदर रूप में उनके तत्वों को बतलाया।
तो एक और हीरो का मन लगा इस शब्द का
तत्वों के अतिरिक्त ये भी
कुछ जान लेना आवश्यक है दो बात
कि कुछ लोग आजकल मध्वाचार्य जी से गौड़ीय वैष्णव का संबंध नहीं रखना चाहते। वो लोग कहते हैं कि बलदेव विद्याभूषण जी पहले उड़ुपी में गए और वहां पर उन लोगों से मंत्र दीक्षा लिया और इसीलिए पीछे से गौड़ीय वैष्णव से संबंध हुआ, इसने जोर करके उन्होंने गौड़ीय परंपरा की धारा को मध्वाचार्य के साथ में जोड़ दिया। किंतु यह बात ठीक नहीं। हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने सबसे पहले जो चैतन्य महाप्रभु के समसामयिक थे और महाप्रभु जी से शिक्षा जिन्होंने ली थी और उन्हीं से और बल्कि पहले कवि कर्णपुर महाप्रभु जी का अंगूठा चूसा और उसमें संस्कृत संचरित हुई और उन्होंने बड़े बड़े प्रामाणिक ग्रंथों को लिखा। उन्होंने भी इस गुरु परंपरा को ग्रहण किया, ब्रह्ममार्ग गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को। उन्होंने ब्रह्मा से नारायण या कृष्ण, उससे ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्वाचार्य और उसके बाद में उनके शिष्य और उसमें लक्ष्मीपति से माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु, यहाँ तक उन्होंने वर्णन किया। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इसी को ग्रहण किया और फिर इसी को ही दो एक इधर उधर फेर से शब्दों का फेर, नाम में फेर नहीं, कवि कर्णपुर ने इसको उन्होंने वर्णन किया और इसी दोनों को ही हमारे बलदेव विद्याभूषण ने इसको और अच्छी तरह से स्पष्ट करके उसमें कुछ और जोड़ दिए। इन लोगों के बाद में इस महाप्रभु के बाद में नित्यानंद प्रभु, स्वरूप दामोदर अद्वैताचार्य, स्वरूप दामोदर राय, रामानंद रूप सनातन इत्यादि का भी उन्होंने वर्णन कर दिया। यहाँ तक नरोत्तम ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और अपने गुरु तक का उन्होंने बलदेव विद्याभूषण ने वर्णन करके दिखाया। उन्होंने तरह तरह से प्रमाण किए कि गौड़ीय वैष्णव का संपर्क मध्वाचार्य से है, क्योंकि मध्वाचार्य का मूल जो सिद्धांत है जीव और ईश्वर में भेद, ये उन्होंने माना। और इससे भी अधिक शुभानंद जी ने भी बतलाया, पर ब्रह्म का स्वरूप, नित्य स्वरूप उन्होंने स्वीकार किया और वो भी कृष्ण के रूप में, नित्य गोपाल को और उनकी उपासना पद्धति में जो 8 मठ हैं उसमें गोपी भाव से आराधना करने की बात उन्होंने सब अपने शिष्यों को सिखलाया और उसको गोपनीय रखा। संप्रदाय के जो मूल 8 आचार्यों के जो 16 आचार्य होंगे उन लोगों को गोपी भाव से भजन करना पड़ेगा, वही गोपी भाव हम लोगों में भी गौड़ीय वैष्णव में प्रधान रूप में है। दूसरी बात, लक्ष्मीपति तीर्थ थे तो माधवेंद्रपुरी कैसे हो गए, इसलिए लोग कहते हैं कि इसमें हम लोगों के संप्रदाय से संबंध नहीं है। कभी ऐसी बात नहीं, माधवेंद्रपुरी पाजी पहले वो शिष्य थे, दीक्षा मंत्र में दीक्षित थे, मध्व संप्रदाय में लक्ष्मीपति तीर्थ से, किंतु इसके बाद में वो अप्रकट हो जाने के बाद में इनकी संन्यास लेने की इच्छा हुई तो इन्होंने किसी से पुरी नाम के एक वैष्णव उसी संप्रदाय की धारा में उनसे उन्होंने संन्यास लेकर के ये पुरी के नाम से दीक्षा किए। किंतु सब समय दीक्षा का मंत्र ही प्रधान होता है। चैतन्य महाप्रभु जी ने ईश्वरपुरी पास से मंत्र ग्रहण किया दीक्षा, उनके दीक्षा गुरु वो संन्यास देने वाले नहीं होंगे, उनके विचारों का उन्होंने ग्रहण नहीं किया। क्या नाम था उनका अरे महाप्रभु के संन्यास दाता केशव भारती, उनके अद्वैत मत का विचार का उन्होंने नहीं लिया बल्कि उसका सर्वत्र खंडन किया और ईश्वरपुरी पाद को अपना गुरु कहा और ईश्वरपुरी पाद के शिष्य को अपना प्रधान सेवक बनाया गोविंद जी को और उनके विचारों को महाप्रभु जी ने ये सब भक्ति का विचार लिया, इसलिए उन्होंने संन्यास लेने का संबंध उसमें नहीं है। मध्वाचार्य भी संन्यास लिया किससे, एक अद्वैतवादी सन्यासी से, किंतु थे वैष्णव, वैष्णव धर्म का प्रचार किया। उन्होंने उस सन्यासी गुरु को शास्त्रार्थ में हरा करके उसको भी दीक्षा मंत्र वैष्णव मंत्र में दीक्षित किया था। महाप्रभु जी ने भी छल बल कल से केशव भारती को के मंत्र में कान में मंत्र देकर के शिष्य बना करके फिर उनसे ये शिष्य वो मंत्र लिया था। इस तरह से मध्वाचार्य का विचार चैतन्य महाप्रभु जी ने ग्रहण किया, हमारे माधवेंद्रपुरी जी ने ग्रहण किया। संन्यास से लेने से उसका विचार नहीं बदल जाता और गुरु का परिवर्तन नहीं हो जाता, ऐसा ही रामानुज के चरित्र में भी देखा जाता है और सब वैष्णव के चरित्र ऐसे देखे जा सकते। संन्यास किसी से ले लिया किंतु दीक्षा का और संबंध ज्ञान को देने वाला जो गुरु है यही प्रधान गुरु होता है। यद्यपि संन्यास गुरु का भी महत्व है किंतु उससे भी महत्व दीक्षा गुरु का है। यदि संन्यास गुरु भागवत परंपरा में आता है और वो यदि श्रेष्ठ है तब तो उसको हम ग्रहण करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। इसलिए अच्छी तरह से पांचरात्रि गुरु प्रणाली और भागवत प्रणाली को ये जान लेना उचित है। हम लोगों में अधिकांश लोग भागवत परंपरा को नहीं समझते, किंतु भागवत परंपरा के अंतर्गत में पांचरात्रि की गुरु प्रणाली गुरु परंपरा अनुसूत माने उसके अंतर्भुक्त है, इस चीज को समझना चाहिए और उसका वैशिष्ट्य अधिक है। भागवत परंपरा किस पर निर्भर करती है? भजन के ऊपर में, भजन शिक्षा के ऊपर में। और पंचरात्रि अर्चन पद्धति ये निर्भर करती है साधारण लोगों को थोड़ा सा संबंध ज्ञान देने के लिए, क्या वो प्रभु है हम दास हैं, वो प्रभु स्वामी है कृष्ण और हम उनके नित्य दास है, बस ये संबंध ज्ञान देने के लिए पुष्ट करने के लिए गुरु जी मंत्र देते हैं। किंतु अधिक उन्नत वैष्णवों के लिए भागवत परंपरा का प्राधान्य है। जैसे प्रारंभ में कृष्ण ने या नारायण ने ब्रह्मा जी को दीक्षा मंत्र और उपनयन नहीं दिया कि दिया, उनके मन में आविर्भूत होकर के अपनी क्या वो स्फूर्ति कराई और उनको यह संबंध ज्ञान या जो कुछ उन्होंने दिया, उपवीत दिया, यज्ञ के उपनयन होम कार्य ये सब नहीं किया। ये इसको कहते हैं पांचरात्रिक पद्धति। अयोग्य को योग्य बनाने के लिए वैदिक रीति से उपनयन देकर के अग्नि संस्कार इत्यादि करते हैं, जो ये मेरे गुरु हैं साधारण लोगों को एक दृढ़ता के लिए। और भागवत परंपरा गुरु भागवत के ऊपर में प्रतिष्ठित है। कृष्ण का हम भजन किस रूप में करें? आराध्य भगवान ब्रजे सतनयस्तद धाम वृंदावन बिंदारण्य के काचित उपासना बजुबधु गर देई न जा कल्पिता। ये बजुबधु वर्ग के अनुसार में कृष्ण के भजन राधा कृष्ण जुगल की उपासना की जो शिक्षा देता है उसमें प्रवेश कराता है, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर जी ने प्रवेश कराया। ये भागवत परंपरा, कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि स्वरूप दामोदर जी ने रघुनाथ दास को उपनयन संस्कार और अग्नि संस्कार कराया, कहीं नहीं उल्लेख। किंतु जदुनंदन आचार्य ने जो दीक्षा दी पंचरात्रिक विधान से उससे ये लाखों गुना श्रेष्ठ है। इसलिए उन्होंने सर्वत्र जहां गुरु का प्रणाम किया है, जदुनंदन को करने पर भी रूप गोस्वामी को और स्वरूप दामोदर को उन्होंने हृदय से ग्रहण किया और उनके विचारों को लिया। इसलिए गुरु परंपरा की धारा में मध्वाचार्य के द्वारा हम लोगों का संबंध है, इसको अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। कुछ आधुनिक लोग इसका खंडन करते हैं, कहां वो लोग तीर्थ और ये पूरी। वो लोग कहते हैं कि ये माधवेंद्रपुरी और ईश्वरपुरी मायावादी सन्यासी के शिष्य मायावादी थे, किंतु कुछ वैष्णव विचार था, इसलिए हम लोग मायावादी संप्रदायों के अधिक निकट में मध्वाचार्य के संप्रदाय के, तब तो हम लोग तो मायावादी हो गए अद्वैतवादी। इन अज्ञानियों को ये बुद्धि नहीं घुसती है। इसलिए प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने स्पष्ट रूप में जगत में प्रकट होकर के भागवत परंपरा की प्रमुखता स्थापित की। वो यदि नहीं आते ना तो ये भागवत परंपरा शायद लुप्त हो जाती और ये पंचरात्रिक पद्धति रह जाती। पंचरात्रि की पद्धति का कुछ है, उसका वैशिष्ट है, ठीक है। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे आचार्यों ने साधारण लोगों के लिए पंचरात्रिक विधान, अर्चन, पूजन, मंदिर बनाना इत्यादि को भी ग्रहण किया और दीक्षा प्रणाली उसी के अंदर में ग्रहण की, किंतु अधिक महत्व दिया इस भागवत परंपरा के ऊपर। परीक्षित महाराज जी का सुखदेव गोस्वामी से क्या संबंध था? दीक्षा परंपरा से लिया, उपनयन दिया। खुद व्यास जी ने उनको, सुखदेव गोस्वामी को, क्या अग्नि संस्कार के द्वारा उपनयन दिया? उपनयन तो उनका अंत तक ने उन्होंने ग्रहण नहीं किया, तो शिक्षक उनका इस दीक्षा प्रणाली से संबंध क्या है? इस अर्चन मार्ग में पंचरात्रि से जो विचार है उसे व्यास जी का और इनका सुखदेव गोस्वामी का कोई संबंध नहीं दिखता। इसलिए ये भी भागवत परंपरा में है। उनको मंत्र कोई सी दिया न कि श्रीमद भागवत को उनको पढ़ाया और कैसे भजन किया जाता है, गोपियों की महत्ता इत्यादि को दिखला करके उसको परम रसिक भावुक भक्त बना दिया। यह है भागवत परंपरा। पंचरात्रिक पद्धति में ऐसा संभव नहीं है। हो सकता है यदि पंचरात्रिक दीक्षा गुरु ऐसा योग्य रसिक भावुक हो तो अपने शिष्य को भी ऐसा बना देगा, किंतु सर्वत्र यह ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों का संबंध मध्वाचार्य के संप्रदाय से है। विग्रह का रूप, नित्य स्वरूप सचिदानंद स्वरूप, और दूसरा नित्य भेद, सेवक और सेवक सेव्य का ये भेद, इसके प्रतिष्ठित, इसी के ऊपर मैं प्रतिष्ठित किया। दूसरी बात, आजकल आठ दिन नवरात्रि में देवी का पूजन होता है, इसमें भी होता है और रामनवमी के समय में चैत्र महीने में होता है। देवी से इसका क्या संबंध है? आज तक कोई देवी भक्त इसको सिद्ध नहीं कर सका। रामचंद्र जी का चैत्र महीने में जन्म हुआ और इस महीने में मार्गशीर्ष में है नहीं, इसमें अश्विन, इसमें अश्विन को शायद मार्गशीर्ष कहते हैं, अगहन को कहते हैं। तो इसमें रामचंद्र जी ने रावण को मारने के लिए शुभ यात्रा की थी, इसमें देवी कहां से टपक पड़ी? क्या देवी का जन्म है? ना कि देवी जी का आजकल विवाह हुआ था, ना आज देवी जी अप्रकट हुई थी, ना कि क्या संबंध है? श्रीमद् भागवत में देवी का चरित्र इत्यादि वर्णन है, जो महामाया के रूप में, योग माया के रूप में उनका वर्णन है, और उनका नाम विंध्यवासिनी, दुर्गा, काली, जया, विजया इत्यादि बहुत से नाम है, ठीक है। किंतु आज उनका जन्म हुआ ना, आज उनका तिरोभाव हुआ ना, आज उनकी शादी किसी से हुई ना, क्या दिन का है जिसके लिए ये लोग करते हैं? ये सब चीजें ठीक नहीं है। बंगाल में बड़े मेधावी पुरुषों का जन्म होता है, वो एक क्या है, कृषि उपजाऊ भूमि है, वहां पर जैसे बड़े बड़े भक्तों का जन्म हुआ, महाप्रभु का जन्म हुआ है, वैसे ही विद्यासागर का भी जन्म हुआ है, वैसे ही कौन, कृतवासी ओझा, बहुत ही मेधावी व्यक्ति था किंतु लौकिक, उसने देखा कि रामचंद्र जी की सब लोग पूजा करते हैं, उनके द्वारा देवी की पूजा यदि हम करा दें कि उसे लिख करके अंत संत लिख दें तो वो रामायण जैसा वो भी प्रमाणिक होगा और सब लोग मान लेंगे, और ठीक ऐसा ही हुआ। बंगाल के सब लोग उसी को मानने लगे और देवी की पूजा 250 वर्ष पहले से ही नहीं है, और उनसे पंजाबियों का बहुत कुछ मिलता है स्वर, क्योंकि दोनों वैसे ही हैं। तो इसलिए उन लोगों ने भी ये दोनों देशों में, प्रदेशों में, पंजाब में और बंगाल में, उधर दोनों में देवी की, दुर्गा की पूजा होती है, लड़ते हैं, कटते हैं तामसिक भाव, और उसमें साधु चरित्र के लोग भी बहुत से हैं जो कि महाप्रभु के अनुगत होकर के भगवान की
सर्वोच्च विश्व में उपासना करते हैं। इसलिए आजकल देवी जी की जो पूजा हो रही है वो शास्त्र प्रमाणिक नहीं है। उसका कुछ एक बार हमने पत्रिका में लिखा तो यहाँ के पंडितों ने बड़ा उपद्रव मचाया। मैंने कहा जैसे अच्छे तुमको चैलेंज करता हूँ, तुम अपना प्रबंध दो और इसका खंडन करके तुम लोग लिखो। इसके बाद में सभी लोग शांत धीरे धीरे हो गए। इस तरह से आज रामचंद्र जी की विजय का दिवस है, आज देवी का नहीं है, तभी लोग करते हैं तो करें, लौकिक फल उनको जो कुछ मिल रहा है। तो आज रात अधिक हो गई, आज यहीं पर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। अंग्रेजी में हमारे सुबल सखा जी ब्रह्मचारी जी सब लोगों को बोल देंगे गौ प्रणाम। कल एकादशी है ना? कल एकादशी है और परसों द्वादशी, नहीं द्वादशी और तीसरे दिन में त्रयोदशी और चतुर्दशी दोनों मिल गया है। चतुर्दशी लुप्त हो गई है इसलिए पूर्णिमा आ जाएगी। पूर्णिमा के दिन में सर्व पूर्णिमा है, उस दिन हम लोगों के गुरु जी का विरह तिथि है और कृष्ण का रास का दिन भी है शरद पूर्णिमा। उस दिन हम लोग वृंदावन में गुरु जी का विरह तिथि मनाएंगे। आप लोगों से भी निवेदन है, आप लोग सभी लोग वृंदावन में गुरु महाराज जी के विरह तिथि महोत्सव में आप लोग सब सम्मिलित होंगे। बस गौर प्रणाम।